जयदेवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 15
ओम नमः सिद्धेय
ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय
ओम शुद्धात्मने नमः नमो
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो वच्चायाणं
नमो लोये
सौवसाहुः
उवसमिदसयलदोषे उवसन्तकषाय वीर्यायन्ते उवसामये पणमिवम् कषाय उवसामणं ओच्छम। यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14वीं पुस्तक में अभी हम चारित्रमों की उपशामना नाम का अर्थाधिकार देखते हुए पृष्ठ संख्या 90 पर आ गए। 90 श्रेणी उतरने वाले उपशम श्रेणी उतरने वाले जीव की हम क्रम से बात देख रहे हैं। तो स्थितिबंध बढ़ते बढ़ते पल्ले प्रमाण स्थितिबंध हो जाता है, तो उसके बाद वृद्धि का प्रमाण पल्ले के संख्यात्वे भाग प्रमाण रह जाता है। यानी संख्यात्वा संख्यात्वा भाग अभी बढ़ेगा। अब तक क्या हो रहा था शुरू में,
असंख्यात
एकदम शुरुआत में, तो जब उतरना शुरू किया तो संख्यात वर्षों का स्थितिबंध था, मोहनीय का अन्य का भी, वो बढ़ते बढ़ते फिर असंख्यात गुणा में चला गया था। उसके बाद संख्यात गुणा हुआ था दुरापकृष्टि के बाद, और अभी जो बंध है वो संख्यात वे भाग अधिक बढ़ेगा। वृद्धि का प्रमाण पल्ले तक आया है, उसके पश्चात अभी और नीचे उतरते समय पल्ले के संख्यात वे भाग एक बार उसकी वृद्धि होगी, ये चलेगा। पहले असंख्यात गुणा, फिर संख्यात गुणा वृद्धि, बाद में पल्ले के संख्यात वे भाग इतनी वृद्धि, पल्ले जितना हुआ ना, क्या लिखा देखो पहले पल्ले के असंख्यात वे भाग जितना उसका स्थितिबंध था, स्थितिबंध कितना था पल्ले का असंख्यात वे भाग था,
वृद्धि
तब वृद्धि कितने हो रही थी, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा वृद्धि हो रही,
पल्ले के असंख्यात बहुभाग था,
यानी जितना था उससे असंख्यात गुणा वृद्धि हो रही। उसके बाद क्या हुआ, दुरापकृष्टि तक पहुंच गया, फिर वृद्धि का प्रमाण कैसा हुआ, संख्यात गुणा संख्यात गुणा, वो पल्ले के संख्यात वे भाग इतना ही था, मगर वो पूर्व बंध से ये संख्यात गुणा कहलाता है। लास्ट में जब पल्ले प्रमाण हुआ तो एक साथ संख्यात बहुभाग प्रमाण वृद्धि होकर वो पल्ले जितना हो गया। अभी उसके बाद कितना बढ़ेगा एट अ टाइम, पल्ले के संख्यात वे भाग इतनी वृद्धि होगी एट ए टाइम, तो बढ़ते चला जाएगा। अभी पल्ले हुआ है, फिर सागर होगा, फिर 25 सागर 50 सागर होता चला जाएगा, बढ़ेगा।
या प्रमाण में भी उलट पुलट हो गया ना, जो पहले नाम गोत्र और वेदी ऐसा जो अलग,
वो तो हो गया पहले, पहले जो उसका क्रम था अलग अलग,
मोनी का सबसे कम था,
तो ये इस तरह आ गए, वो बीसीए तीसीए चालीसीए उसके प्रपोर्शन में आ गया। अभी हम 90 पृष्ठ पर सूत्र पढ़ेंगे। एदेन कमेन पलिदोमस संख्यज्यदि भाग परिवड्ढीये ठिदिबंध सहस्येषु गदेषु अन्नो एइंद्रिय ठिदिबंध समगो ठिदिबंधो जादो। इस क्रम से पल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण वृद्धि के द्वारा हर बार पल्ले का संख्या तो अभाग बढ़ा, पल्ले का संख्या तो अभाग बढ़ा, पल्ले का संख्या तो अभाग बढ़ा। इस तरह से हजारों स्थिति बंधों के जाने पर अन्य स्थिति बंध, यानी यहाँ का नया जो एक कोई पर्टिकुलर स्थिति बंध, एकेंद्रीय जीवों के स्थिति बंध के समान हो जाता है। तो एकेंद्रीय में हम देखते हैं मोनी का एक सागर है तो उतना हो जाएगा मोनी का, और नाम गोत्र का कितना हो जाएगा?
2/3 नहीं आप तक इसका
नहीं, वो तो इतना नहीं हो
एक
जाएगा।
सागर
प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं, जैसे 40 ईयर का अगर 4 सप्तमांश होता है तो 20 ईयर का 2 सप्तमांश और ज्ञानावरण का 3 सप्तमांश होगा। एक सागर लेना है हमें, उस प्रोपोर्शन में होगा,
आधा हो जाएगा।
आधा सागर किसका होगा? 20 ईयर का।
हाँ 20 ईयर का।
इसका एक सागर है तो 20 ईयर का
आधा
सागर, और उसका 3/4 सागर, जैसे पल्ले में लगाया था हमने
0.75 सागर।
एकेंद्रीय जीवों के स्थिति बंध के समान हो जाता है। देखो पल्योपम प्रमाण स्थिति बंधों से ऊपर अनंतर प्ररूपित स्थिति बंध संबंधी वृद्धि, यानी अभी अभी कौन सी वृद्धि बताई? पल्ले के संख्यात वे भाग प्रमाण वृद्धि, उस वृद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले, यानी एट ए टाइम इतनी इतनी वृद्धि होते हुए अनिवृत्ति उपशामक जीव के, ये अनिवृत्ति करण वाला जो उपशामक है, उतरने वाला नवे गुण स्थान वाला, संख्यात हजार स्थिति बंधों के निकल जाने पर सागरोपम के 4/7 भाग प्रमाण एकेंद्रीय जीव संबंधी स्थिति बंध के सदृश मोहनी कर्म का स्थिति बंध हो जाता है। वो एक सागर है, वो मिथ्यात्व का है, और ये चारित्र मोहनी का कितना होगा? 4 सप्तमांश सागर, 4/7 सागर। तथा शेष कर्मों का अपने अपने प्रतिभाग के अनुसार अपने अपने प्रपोर्शन में, एकेंद्रीय का नाम गोत्र का कितना होता है? तो 2 सप्तमांश सागर, और ज्ञानावरण आदि का
3 सप्तमांश
सागर। एकेंद्रीय जीवों के समान स्थितिबंध हो जाता है, यह सूत्र का समुच्चयार्थ है। यानी मोह का 4 सप्तमांश सागर, ज्ञानावरण आदि का
3 सप्तमांश
सागर, और नाम गोत्र का 2 सप्तमांश सागर। एक सागर अभी मिथ्या तो यहाँ बंध नहीं है ना, नवे गुण स्थान का है वो एक सागर, जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव 70 कोड़ा कोड़ी बांधता है वहाँ एकेंद्रीय जीव एक सागर बांधता है। मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय, ये त्रैराशि कैसे निकालना हमको? एक सागर कहाँ से निकाला और 3 सप्तमांश कहाँ से निकाला?
70 कोड़ा कोड़ी
देखो ये प्रपोर्शन कैसे निकालना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर जहाँ मिथ्यात्व का स्थितिबंध होता है संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थितिबंध, वहाँ एकेंद्रीय जीव में कितना होता है?
एक सागर।
तो जहाँ 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थितिबंध वाले ज्ञानावरणादि है उसका कितना होगा? ये त्रैराशि है ना, 30/70 × 1 तो ये 3/7 हो जाएगा, 3 सप्तमांश सागर। हम ऐसा लिखते हैं 3 सप्तमांश सागर, कोई बात नहीं। चलो ये त्रैराशि किस तरह से, जहाँ 70 कोड़ा कोड़ी है वहाँ एक इंद्री का एक सागर होता है, तो जहाँ 30 कोड़ा कोड़ी होगा वहाँ कितना होगा, जहाँ 20 कोड़ा कोड़ी होगा वहाँ कितना होगा, ये प्रपोर्शन हमेशा कायम रहेगा। केवल ये प्रपोर्शन वहाँ श्रेणी में उल्टा पुल्टा हो गया, बाकी अदरवाइज वो प्रोपोर्शन कायम रहता है। इस प्रकार इस क्रम से फिर भी स्थिति बंध की वृद्धि द्वारा, इतना होने के बाद भी फिर भी वृद्धि कैसे हो रही, पल्ले के संख्या पे भाग प्रमाण हरेक में वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि लिखा है, वृद्धिकरण ब है उसको व्रत वृत्ति, हाँ वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव के क्रम से अपने अपने स्थान में इंद्रिय आदि जीवों के समान स्थितिबंध हो जाता है। इस बात का ज्ञान करने के लिए, कथन करने के लिए आगे के सूत्र का उपन्यास करते हैं, अपने सूत्र बताते हैं। यानी अभी तक बढ़ते बढ़ते कितना हुआ है, चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश, दो सप्तमांश, एवं बी इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, असन्य स्थितिबंध, समगो स्थितिबंध। इस प्रकार क्रम से द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी जीवों के स्थितिबंध के समान स्थितिबंध हो जाते हैं। स्थितिबंध के समान लिखा है, वो जीव जितना स्थितिबंध करते हैं उतना स्थितिबंध अभी इस जीव को हो रहा है। इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, जैसे हमने एकेंद्रिय में लिखा, अभी द्विंद्रिय का ऐसा जो हम मिथ्यात्व का स्थितिबंध कितना होता है, द्विंद्रिय का 25 साल, तो 40 यानी वो चारित्र मोहिनी का 25 का चार सप्तमांश, पहले हमने एक एक का तीन सप्तमांश लिखा ना, इसलिए तीन सप्तमांश सागर लिखा। अब इसी को यहाँ इसको 25 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 25 करो, 25 सागर का तीन सप्तमांश द्विंद्रिय के लिए और मोहिनी के लिए चार सप्तमांश हो जाएगा। यहाँ अभी वैसे तीन इंद्रिय के समान जहाँ होगा 50 सागर का चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश, दो सप्तमांश, चतुरिंद्रिय में 100 सागर का चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश, दो सप्तमांश, असंगी जैसा जहाँ लिखा है 1000 सागर के चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश, दो सप्तमांश, 91 पेज 91। यानी श्रेणी उतरने वाले का स्थितिबंध बढ़ते बढ़ते एक इंद्रिय के समान हो जाता है, द्विंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चतुरिंद्रिय के, असंगी के समान। ये एक एक बीच वाले कुछ माइलस्टोन जिसको कहेंगे, कुछ विशिष्ट, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, ये बताने के लिए। वैसे क्रम से बढ़ ही रहे ना, 25 सागर का चार सप्तमांश लेके बीच में और भी कुछ 10 सागर का भी ले लो, 20 सागर का भी ले लो, ये बताने के लिए उन्होंने अलग अलग स्टेप्स बताए।
अभी भी जीव अनिवृत्तिकरण में है,
अभी अनिवृत्तिकरण में ही है।
एक सागर में कितने पल्ले, 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं,
एक सागर, हाँ 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का कोड़ा कोड़ी,
तो 10 कोड़ा कोड़ी इंटू संख्या, इतना तो यहाँ पे बंधक के अलग अलग स्थान हो गए।
देखो आप विचार करो, उसको भी संख्या कहा है या कुछ हजार कहा है, वो एक एक बार में इतने होते हैं, हर बार ऐसा ही है, नहीं समझे क्या? मान लेते हैं कि पल्ले के संख्या से भाग एट ए टाइम वृद्धि होती है, हम चौथा भाग लेते हैं, यानी चार बार स्थितिबंध हो गए
तो एक
तब एक पल्ले बढ़ा,
एक पल्ले बढ़ा, सॉरी
एक सागर बढ़ने के लिए कितना होगा,
10
कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर,
10 कोड़ा कोड़ी इंटू,
यानी वो 40 कोड़ा कोड़ी बार स्थितिबंध अलग अलग हो गए तब जाके एक सागर प्रमाण वृद्धि हुई। अब ये कितना, एक सागर का इतना भार, फिर 25, फिर 50, फिर 1000, फिर और बढ़ेगा 100 और 1000, यानी वो कितने बार बीच बीच में, यानी स्थितिबंध के अंतर्मूर्त भी कोड़ा कोड़ी बार हो जाते, अनेक कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी नहीं, और ये अभी नहीं हुआ है, पहले से चला आ रहा है, और ये सारे अंतर्मूर्त 90 गुण स्थान के अंदर हो रहे हैं, यानी अंतर्मूर्त भी कितना छोटा छोटा है, वो नवा गुण स्थान इटसेल्फ कितना छोटा है, यानी केवली के ज्ञान की कैसी महिमा आती है, और हर बार कितना कितना बढ़ रहा है, वो तो सब उनके पास तो सब गणित है। देखो ये हम 91 पेज पर पढ़ रहे हैं, सूत्र के नीचे, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, इस प्रकार इस क्रम से जिसमें संख्यात हजार स्थितिबंध अंतर्निहित है, अंतर्निहित इंक्लूडेड है, गर्भित है, ऐसे अनिवृत्तिकरण के शेष बहुभागों के व्यतीत होने पर। तदनंतर अधस्थन गुणस्थान के अभिमुख हुआ। इसके नीचे का कौन सा गुणस्थान है सेजल? हाँ बहुत अच्छा, आठवा। उसका नाम अपूर्व का। तो अधस्थन नीचे के गुणस्थान के अभिमुख हुआ, ने सन्मुख हुआ, क्योंकि अभी नीचे जा रहा है ना वो। यह जीव अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में स्थित होता है। अब ये स्थितिबंध बढ़ाते बढ़ाते अंतिम समय तक आ पहुंचा। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का निर्देश करते हैं। तदो स्थितिबंध सहस्रेषु गदेषु चरिम समयम अनियट्टि जादो। तत्पश्चात हजारों स्थितिबंधों के बीत जाने पर यह जीव अंतिम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण हो जाता है। यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ संबंधी स्थितिबंध के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए, यहाँ संबंधी यानी इस पॉइंट पर अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय, हाँ उतरने वाले के यहाँ कितना होगा स्थितिबंध वो बता रहे आगे के सूत्र को कहते हैं। तो कहते चरिम समय अनियट्टिस ठिदिबंधो सागरोवम सदसहस्र पुधत्तम अंतो कोडिये। अंतिम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण संयत के एक कोटि सागरोपम के भीतर, कोटा कोटि नहीं कहा, कोटि लिखा, एक कोटि के यानी लेस देन वन करोड़ सागर, 1,00,000 पृथक्त्व सागरोपम, एक्चुअली 1,00,000 पृथक्त्व सागरोपम कहना चाहिए। एक शब्द क्यों डालते पता नहीं है। सागरोम सदसहस्र पुदत्तम, शत सहस्र यानी 1,00,000, 1,00,000 सागर पृथक्त्व या पृथक्त्व 1,00,000 सागर यानी कुछ 1,00,000 सागर, 50,00,000 सागर कहो, 70,00,000 सागर कहो, 10,00,000 सागर कहो, लेस देन करोड़ सागर। हाँ एक शब्द से कुछ मायना नहीं लगता क्यों, पृथक्त्व लिखा है ना हमने आगे, यानी 1,00,000 ये जो क्वांटिटी है वो अनेक बार लेनी है और इतने सागर करने हैं, यानी हमारी भाषा में कुछ 1,00,000 सागर स्थितिबंध होता है। ये फुलचंद जी वगैरह इन लोगों ने किया, 1,00,000 पृथक्त्व लिखा है उन्होंने, 1,00,000 पृथक्त्व लेना है लेकिन यानी 1,00,000 के अधिक बार लेना है।
3 से 9 लेते हैं।
चढ़ने वाले अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय संबंधी स्थितिबंध के प्रतिभाग के अनुसार, क्या कहा, जो चढ़ रहा था अनिवृत्ति के पहला समय है और यहाँ पर अनिवृत्ति का अंतिम समय है, तो वहाँ जो स्थितिबंध होता था उसके प्रतिभाग के अनुसार उसके प्रपोर्शन में, यहाँ पर अर्थात उतरने वाले अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में 1,00,000 पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितिबंध की सिद्धि होने में निषेध का अभाव है। इतना यहाँ बढ़ते बढ़ते इतना स्थितिबंध हो रहा था, हमने देखा था ना 1,000 सागर के कुछ 4 सप्तमांश वगैरह वगैरह होता था, फिर बढ़ते 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 अनेक सागर, कितने सागर, 1,00,000 पृथक्त्व सागर प्रमाण जितना हो गया। हाँ नवे के अंत में है, हाँ उसका काल छोटा है ना इसलिए वह इतना हो जाता है, इतना स्थितिबंध बढ़ जाता है, उसका शुरू में इतना था उसका लास्ट में इतना हुआ।
हमने दो गुना देखा था, आगे चढ़ने वाला का आधा होता है, यहाँ पे डबल होता है, इसे हमने
उसके प्रतिभाग के अनुसार, यानी अभी जो 2 गुना है तो उसके प्रतिभाग प्रोपोर्शन के अनुसार उसके उसमें हो जाएगा, फिर भी उसका कथन कितना होगा, 1,00,000 पृथक्त्व,
1,00,000 पृथक्त्व,
यहाँ 25,00,000 पृथक्त्व होगा, वहाँ 50,00,000 पृथक्त्व होगा, पृथक्त्व नहीं 25,00,000 50,00,000 सागर, 25,00,000 सागर 50,00,000 सागर, वो जो कुछ प्रोपोर्शन है। मैंने अन्यत्र हमने डबल देखा था ना, इसीलिए फिर भी उसको करोड़ से लाखों सागर, हाँ लाखों में वो पुस्तक पर लगा दो, लाखों अनेक लाख सागर, हाँ लक्ष्य पृथक सागर,
हाँ
बरोबर। ये लक्ष्य पृथक सागर स्थिति बंध था का स्थिति सत्व था, यहाँ तो स्थिति बंध ही लिख रहे हैं।
फिर भी तो सत्व तो अंतकोड़ा पूरी प्रमाण ही होता है ना,
हाँ
सत्व तो अंतकोड़ा पूरी प्रमाण
है, सत्व उतना ही है। तदनंतर समय में, हाँ ये मुझे जो सत्ता की बात याद आई वो चढ़ने वाले क्षपक की,
हाँ
उसके सत्व कम हो जाता है, स्थिति सत्व, हाँ तदनंतर समय में यह जीव अपूर्व करण में प्रविष्ट होता है। अच्छा, से काले अपूर्व करणम पवित्रो, तदनंतर समय में यह जीव अपूर्व करण में प्रविष्ट होता है, यह सूत्र सुगम है। अनंतर समय, से काले ने अनंतर समय तादे चेव, आगे की लिखा है तादे चेव अपसत्थ उवसामणा करणम निदत्ति करणम निकाचना करणम च उघाड़ी दाड़ी, उघाड़ी दाड़ी, दाड़ी कैसा होगा, उघाड़ी दा डी 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 करते क्या है 92, जरा देख लेना उघाड़ी दा होना चाहिए था ना, 92 पेज 379 पर 11 नंबर का पॉइंट, उघाड़ी दानी है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है इतना क्या आया उघाड़ी दानी, थोड़ा थोड़ा समझ नहीं लगा है मेरे को क्या हाल होगा ये अच्छा उन्होंने पीछे लिए हैं सूत्र, रेफर कर सकते हैं ना, उघाड़ी दाणी अनेक है ना, तीन है, यानी ये जो तीन करण अपूर्व करण के पश्चात अनिवृत्ति करण के पहले समय में ही ये नष्ट हो जाते हैं, उसको हमने उपशमित हुए कहा था, तीन करण नहीं रहे अब ये चालू हो गए। हिंदी अर्थ देखें, उसी समय अप्रशस्त उपशमनाकरण निधत्तीकरण और निकाचनाकरण पुनः प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अनिवृत्तीकरण के महात्म्यवश यानी अनिवृत्तीकरण रूप परिणामों के कारण पहले उपशांत भाव से परिणत हुए इन करणों की, ये करणों को उपशांत किया था, करणों को रोका गया था, नष्ट किया था, अब वो फिर शुरू हो गए, इस समय अपूर्व करण में प्रवेश करने के समय ही पुनः उत्पत्ति होने में प्रतिबंध का अभाव है, यानी फिर उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती, फिर ये करण चालू हो जाते हैं। कौन से कर्मों में हो गए चालू, अश्विन
ये उपशम,
ये तीन करण जो है उपशामनाकरण निधत्तीकरण और निकाचनाकरण, ये कौन कौन से कर्मों में प्रारंभ हो जाएगी, हाँ
सात कर्म,
किसको छोड़ा,
आयु नहीं वेद्य को भी छोड़ना, एक मिनट वेद्य हो तो वो दीर्णा रुक गई है नहीं ये सातों कर्मों में आयु के छोड़
आठों कर्म, हाँ आयु में मात्र एक संक्रमण करण बिना नौ करण होते आयु में भी, ये जरा मेरा फ्रेश है अभी, हमने पढ़ा भी या पढ़ा भी था इसमें, आयु में केवल एक संक्रमण करण नहीं है। अब मेरा प्रश्न दूसरा है, कौन से आयु में ये शुरू होगा?
ये तो मनुष्य आयु में
और देवायु बद्धायु पड़ी होगी तो उसमें
नहीं, तो उसमें भी चालू हो जाएगा। नहीं पर उसमें तो बद्धायु में कुछ वहां पे तो ये तो चालू ही रहता है ना,
ये निकालना पड़ेगा। देवायु में भी कुछ अपकर्षण वगैरह चलता है ग्यारहवें तक,
अपकर्षण चलेगा पर ये निधति निकालते तो अप्रशस्त उत्सव न हुआ तो वो चालू ही रहेगी ना, क्योंकि जिसका उदय नहीं
वो
है
तो ये वही बनाए ना उसमें। अभी आज वो चार्ट ही बनाने हैं, उसके लिए मैंने नोट्स निकाले थे, शिविर में पढ़ाना है ये, करणों के ऊपर बहुत विस्तार से बात आएगी क्योंकि ये बहुत घोटाले है हमारे उसके बारे में, यानी हाँ वो तो क्या निधति निकाचन को ही कर्म ही समझते हैं, आप निकासित कर्म बांधोगे ऐसा कहते हैं।
हम लोग को भी ऐसे ही निधति निकाचन में इतना कितना कर्म है कि वो कभी जाएगा ही नहीं।
हाँ यानी वो किसी कर्म का, किसी कर्म का नाम वो नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो निधति रूप से तो क्या भोगेंगे उसके, तो वो तो छूट जाएगा निधत्तिपना उसका। आयु में नौ करण होते हैं, हमने निकाला ना अलग अलग आयु में देवायु, अभी हम मनुष्य आयु की बात चल रही है, मनुष्य आयु में सभी नौ करण देखते पहले, उसका बंध कहाँ कहाँ होगा, मनुष्य आयु का बंध कौन से गुणस्थानों में मनुष्य आयु का बंध होता है?
मनुष्य और तिरेल के लिए एक और दो गुणस्थान में, और
सामान्य कहो ना
चार चौथा गुणस्थान पर,
पहला दूसरा चौथा, हाँ। तीसरे में आयु का बंध नहीं होता। जहाँ बंध है वहीं पर उत्कर्षण होता है, उत्कर्षण के लिए बंध की अपेक्षा है, वहाँ भी पहला दूसरा चौथे गुणस्थान में उत्कर्षण होगा, तो ये दो बातें हो गई। अब उदय कहाँ तक है?
मनुष्य आयु का चौदहवें तक,
चौदहवें तक है, और उदीर्णा कहाँ तक होगी?
छठे तक,
क्योंकि आयु की उदीर्णा छठे में रुक जाती है। उदय और सत्व चौदहवें तक है, अपकर्षण कहाँ तक होगा? तेरहवें तक अपकर्षण, और उपशम निधत्ति और निकाचित आठवें तक है।
पर ये बद्धायु के बाद हमने जो अभी देखी,
अब देवायु की बात छोड़ो, बद्धायु है ना, देवायु है, उपशम श्रेणी चढ़ के उतर रहा है, देवायु का बंध कहाँ तक है? सातवें तक। उत्कर्षण कहाँ तक होगा? सातवें तक, यानी तीसरे को छोड़कर, तो जहाँ बंध है वहाँ उत्कर्षण भी होगा, तो बंध और उत्कर्षण के गुणस्थान 1, 2, 4, 5, 6, 7। उदय कहाँ तक?
चौथे तक, चार तक
देवायु का उदय। उदीर्णा
चौथे तक,
क्योंकि जहाँ उदय है उसी को उदीर्णा कहेंगे ना, उदय बिना उदीर्णा कैसे होगी? उदीर्णा नहीं, उदीर्णा की बात नहीं कर रहे थे हम, उपशम निधत्ति निकाचित की बात कर रहे थे। बद्धायु में उदीर्णा नहीं है,
उदीर्णा ही नहीं वहाँ पर बद्धायु में,
परंतु उसके करण कौन कौन से? सत्व और अपकर्षण कहाँ तक है? सत्व कहाँ तक है? ग्यारहवें गुणस्थान तक, और अपकर्षण भी ग्यारहवें तक है, और उपशम निधत्ति निकाचित आठवें तक है, यानी बद्धायु के भी उपशम निधत्ति निकाचित चालू हो जाता है।
हाँ
अपकर्षण सामान्य तो होता रहता है,
अपकर्षण होगा, पर मैं सोच रहा था
उदय उदय नहीं है, उदीरना नहीं है,
अपकर्षण होते रहते हैं,
अपकर्षण तो है ना, क्योंकि परिणामों के बस वहाँ भी अपकर्षण वगैरह चलता रहता है, उसमें बंधी हुई आयु में भी चलता है,
अपकर्षण तो वो तो पहले देखा था हमने, अपकर्षण होते रहते हैं।
नहीं तो ये घाता युष्को कैसे होते? श्रेणिक राजा के आयु घट गई, क्यों घटी? दूसरी बार आयु बांधी इसलिए घटी?
नहीं,
क्योंकि दूसरी बार तो नरकायु बांधता नहीं है, समय दृष्टि होने के बाद
बांधेगा ही नहीं
नरकायु तो नहीं, पहले तो नरकायु बांधी है, नहीं नहीं अभी वो आयु बांधेगा नहीं सम्यक होने के बाद, तो बंधी हुई आयु सम्यक के परिणाम के कारण उसका घात होकर बद्धायु में ऐसा घात होता है, उसके लिए दोबारा आयु बांधना चाहिए ये बात नहीं है।
तो वहाँ पे तो निगति निकातीत पड़ा भी नहीं रहेगा ना,
किसमें?
जिसने आयु का बंधन किया है चौथे गुणस्थान में, और चौथे गुणस्थान में उसने आयु का घात किया, तो निगति निकातीत पड़ा भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आयु का जो ऊपर तक जो निषेक पड़े थे,
केवल ऊपर के क्यों नहीं थे, कुछ सभी निषेकों में कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, इतना ले लो,
तो ऊपर के तो अभी घाती हो गया, उतने तो घात कितने
निषेक नहीं थे, निकासित वाले नीचे थे,
नहीं मैं क्या सोच रहा था सभी स्थिति में निधति निकातीत पड़ा रहता है,
अभी जहाँ हो गए उसके बाद तो यहाँ विस्तार से तो यहाँ
पता ही नहीं है,
कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, उसमें ये नहीं होता वो नहीं होता, ये बात जो बताते आयु में इतना ही लेना कि चार आयु में आपस में संक्रमण नहीं होता, बाकी ये नौ करण आयु में होते हैं। यहाँ यहाँ क्या बात हो रही थी अपनी? उत्कर्षण मात्र बंद के समय, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, तो नया बंद अधिक आयु, अभी मान लेते शुरुआत की आयु के बंद की और अधिक आयु बांधी या दूसरे ओकेजन में अधिक बांधी
तो उत्कर्षण,
तो पहले के परमाणु उत्कर्षित होकर ऊपर के निषेकों में चले जाएंगे, बनते समय बंध के समय ही किसी भी कर्म में जहाँ उत्कर्षण कहते हैं, पहले सत्ता में पड़े हैं, ऊपर से नीचे आए हो या सत्ता में वहीं पड़ा हो, नए बंधने के वाले तक फिर ऊपर चला जाता है, तो ऐसा कोई अनादि का कर्म अपने साथ पड़ा हो ना, हमेशा उत्कर्षण उत्कर्षण ही होता रहेगा, क्यों भाई ऐसा कोई होगा? बार बार उत्कर्षण हो रहा है, बार बार उत्कर्षण हो
नहीं,
रहा है,
उसकी तो हमने देखा था ना स्थिति की अपेक्षा,
क्या कहते हैं उसको?
नहीं
उसको क्या कहते?
नहीं वो वर्ड था पर्टिकुलर
शक्ति स्थिति,
हाँ शक्ति स्थिति, वो सत्तर कोड़ा कोड़ी की मिनिमम,
जो सत्तर कोड़ा कोड़ी का बांधा है, निषेक रचना हुई थी, कोई परमाणु 7000 वर्ष और एक समय में पड़े और कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले पड़े, ऊपर से कोई मान लेते अपकर्षण करके नीचे आ गया, अब उसकी बंधी हुई स्थिति कितनी उस समय? 70 कोड़ा कोड़ी, यानी सभी परमाणुओं में कहीं पर भी पड़ा हो किसी निषेक में, उसकी शक्ति स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी
मैक्सिमम,
तो वहां तक ऊपर जा सकता है,
70 कोड़ा कोड़ी में निकल ही जाएगा,
और मान लेते हैं कि अभी वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में एक साल बाकी है,
तो उसका उत्कर्षण एक साल,
एक साल तक ही होगा, ज्यादा नहीं
शक्ति, उसके में उसमें
जितनी शक्ति स्थिति पड़ी है बाकी उतने वहां तक ही उसका उत्कर्षण होगा, हाँ कैसे जाएगा अगर ऊपर के निषेक में से तो जाएगा ही नहीं,
क्योंकि वो नया बंद है ना,
ऊपर के जो निषेक में पड़े, जब मैं पार्टी पर बताती हूँ, ऊपर के निषेक जो है ना सत्तर कोड़ा कोड़ी के टॉप मोस्ट निषेक, उसकी तो पूरी शक्ति स्थिति व्यक्त स्थिति है, हम 10 समय ही लेते हैं ना, 70 कोड़ा कोड़ी की क्यों बात करते, ये 10वां निषेक है, ये बंधा है, तो इसकी इतनी टॉप मोस्ट स्थिति, ये जो पहला निषेक है उसमें ये 10 समय वाली शक्ति स्थिति पड़ी है, परंतु वो अभी यहाँ पहले निषेक में है, अब इसका उत्कर्षण कहाँ तक हो सकता है?
10वें
तक हो सकता है, वो भी समझना ना, अवली बीत गई है, उदयावली के ऊपर पड़ा है, वो सब उसमें अभी उसके झंझट में हम नहीं जा रहे, अभी मात्र वो सामान्य से इसको कथन कर रहे हैं। अब ये दसवें का उत्कर्षण ऊपर और होगा कि नहीं?
नहीं होगा।
मान लेते अभी ये दसवां समय नीचे आते आते
छठा समय पे आ गया,
ये पांचवें समय पर आ गया, तो इसका और ऊपर दसवें समय तक उत्कर्षण होगा कि नहीं होगा? तो कहते नहीं, नहीं। ये उसके आखिरी लिमिट है, इसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता। नया बंधेगा वो, उसका जो कुछ बंधेगा वो बंधेगा।
हाँ,
वो समय दस वाली बांधी, पर ये पांचवा समय, इसकी इसके पांच समय बीत गए हैं और अभी पांचवें समय पर पड़ा है।
हाँ, उसकी शक्ति
हाँ अभी
हाँ, उसकी शक्ति उतनी कम हो गई,
शक्ति उसकी उतनी फिर गई है। अभी शक्ति स्थिति उसकी कितनी पड़ी?
स्थिति की अपेक्षा शक्ति घट गई,
जितनी उस समय बंधी थी उतनी उसकी शक्ति स्थिति है। अरे वैसे तो अनादि का पड़ा रहेगा फिर अंतिम स्थिति के ऊपर
वो नहीं जा
अभी
सकते।
वो गल के नीचे आ गई है, फिर भी उसके ऊपर उसका उत्कर्षण नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये दसवें समय तक था, अपकर्षण होकर पहले चौथे समय पर आ गया मान लेते, और फिर वो ऊपर चला जाएगा, परंतु वो अपनी दसवें की जो पोजीशन है उसके ऊपर नहीं जा सकता। नए के साथ ही तो ये बंध रहा है, ये नए बंध के साथ कहाँ तक जाके जुड़ेगा? इसकी जो शक्ति स्थिति उसके ऊपर नहीं जा सकता, वहां तक ही जा सकता है।
तो मिथ्यात्व का परमाणु जो प्रायोगिक लब्धि में बंधा है वो अंत कोड़ा कोड़ी तक ही साथ में रहेगा, कभी भी वो खीरी जाएगा, पीछे निकल जाएगा।
यानी उसकी शक्ति स्थिति हाँ, कितनी है बंधे की? तो वहां पर उसके कुछ परमाणु निकट रूप में
है। हम लोग ने
शक्ति व्यक्त है ना उसकी, जो है बंधने के समय कोई 7000 साल और एक नहीं नहीं, उसकी अपनी शक्ति स्थिति लिमिटेड है। जितना समय उदय काल निकल गया है उतनी शक्ति स्थिति अभी उसके उतने कम समय बचे हैं। इतना समय मान लेते 70 कोड़ा कोड़ी में से 60 कोड़ा कोड़ी बीत गए,
अभी
अब उसके 10 कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही शक्ति स्थिति बची है,
तो 10 कोड़ा कोड़ी तक
वहाँ तक ही ऊपर जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ, सभी निषेकों में उतनी शक्ति स्थिति है, भले वो निषेक पहला समय में पड़ा हो, फिर भी उस समय वो परिणाम हुए थे ना, उसकी शक्ति स्थिति उतनी है, 70 कोड़ा कोड़ी जितनी।
तीसरे नंबर का निषेक दस में शक्ति स्थिति दस माने मानना,
व्यक्त है तीन समय और शक्ति है दस समय,
सात ही मानेंगे?
नहीं नहीं,
तीन व्यक्ति स्थित हो गए, टोटल दस है, दस माइनस तीन
ले नहीं, वो तीसरा कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है ना,
नीचे भी जा सकता है।
उसमें हमेशा कितनी है, अभी उसमें से कितने समय पास हो गए हैं, मान लेते दो समय पास हो गए ऑलरेडी, तो अभी उसकी शक्ति स्थिति आठ समय की बची है, तो तीन से लेकर आठ तक वो चला जाएगा।
तीसरे नंबर,
तो यहाँ अपनी बात क्या चल रही थी, उतरने वाला जब अपूर्व करण में प्रवेश करता है तो उसके अप्रशस्त उपशामना निधत्य और निकासना ये करण शुरू हो जाते हैं। तो अपनी बात यहाँ से निकली कि ये किस किस में होता है, तो सभी कर्मों में होता है, आठों कर्मों में, आयु सहित सभी कर्मों में ये शुरू हो जाते हैं करण। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। ताधे चेव मोहनीयस मोहनोयस हुआ मोहनीयस नवविह बंधगो जादो, उसी समय नौ प्रकार के मोहनीय कर्म का बंधक हो जाता है। ये नौ कैसे है? अरे अश्विन भाई को भी प्रश्न है, नौ कैसे हैं?
चार और चार आठ ही हो गए ना,
कौन से
नहीं, चार नहीं बराबर हो गए, चार संज्वलन,
चार संज्वलन
पुरुष वेद और चार हास्यरथी भैजुगुप्ता,
हास्यरथी और भैजुगुप्ता।
अच्छा, मैं एक कम गिन रहा था, सॉरी।
हमने क्या देखा था, बंध की विच्छित्ति याद करो, अभी आठवें गुणस्थान के अंत में किसकी बंध विच्छित्ति हुई थी? हास्यरति भैजुगुप्ता की। वो अभी बंध शुरू होगा कि नहीं यहाँ पर, क्या उसमें कोई ऑप्शन होगा? भैजुगुप्ता तो निरंतर बंदी है, हास्यरति के लिए ऑप्शन है, परंतु वो कब शुरू होगा? छठे में होगा, अभी उसके कोई ऑप्शनल नहीं है, इस पोजिशन पर उसके लिए कोई प्रतिपक्ष नहीं है, ऑप्शनल है। उसका प्रतिपक्ष कौन सा है? अरतिशोक, और वो कहाँ बन सकता है? छठे में। तो इस पोजीशन पर क्या होगा, पहले तो पुरुष वेद और चार संज्वलन का बंद होता था, आठवें में प्रवेश करते ही हास्य रति भय और जुगुप्सा का भी बंद होने लगेगा। ख्याल में अब क्योंकि परिणाम विशेष का आश्रय करके हर बार उसका कारण क्या बताया, परिणाम विशेष। हास्य रति भय और जुगुप्सा की यहां पर बंद शक्ति की पुनः उत्पत्ति देखी जाती, अभी वो बंद शक्ति मिट गई थी, अभी फिर शुरू हो गई। ताधे चेव हस्सरदि अरदि सोगाणम एकदरस्य संघादस्य उदीरगो सिया भय दुगुंछाणम उदीरगो। उसी समय हास्य रति तथा अरति शोक इनमें से किसी एक युगल का उदीरक होता है। मंजू इसका अर्थ क्या है? किसी एक युगल का क्या होता है? उदीरक होता है यानी क्या होता है? उदीरना होती है, उदय होता है,
उदय चालू हो गया,
उदय शुरू होगा। अरति शोक का बंध यहाँ पर नहीं है,
उदय है,
उदय है।
आठवें पर
उदय की विच्छेदी कहाँ होती है? आठवें में होती है ना, छह नौ कटाई की। तो कहते कि किसी एक का, अब ये जरूरी नहीं कि हास्य का उदय होगा या शोक का होगा, किसी एक का, ये ऑप्शनल है। तथा भय और जुगुप्सा इनमें से किसी एक का या दोनों का कदाचित उदीरक होता है। कदाचित फिर भी लिखा है,
दोनों का नहीं,
दोनों का भी नहीं हो सकता, इसलिए कदाचित डाला। यानी या तो भय का उदीरक, या तो जुगुप्सा का उदीरक, या दोनों का उदीरक। दोनों का उदीरक नहीं है कहने की जरूरत नहीं ना, इसलिए उदीरक किसका है वो कह रहे हैं। यदि उदय नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा वहां पर। फिर भी उन्होंने कदाचित उदीरक लिखा। आगे कहते हैं, इन छह नौ कषायों का उदय परिणाम समय के अविरोध पूर्वक। ये समय का अविरोध क्या है मंजू? आगम से अविरुद्ध, यानी आगम के अनुसार, आगमानुसार समय के। ये समय कोई एक समय दो समय की बात नहीं है, एक काल की बात नहीं है। समय यानी जिनागम, हम आगम यानी जिनागम को यहां कह रहे हैं, आगमानुसार। पुनः प्रवृत्त हुआ, यह उक्त कथन का तात्पर्य है, अन्य कथन सुगम है। देखो जिनमत के अनुसार उसको स्व समय भी कहा है, यह भी पहले शब्द आया था। अन्य मत के लिए पर समय कहा है, समय सार का वाला वो स्व समय पर समय नहीं। यहाँ आगे लास्ट वाला, तदो अपूर्व करण धाय चाहिए न रह गया। इस पेज पर तीन तीन मिस्टेक्स होगी, अब वो तो देखने की जरूरत नहीं है ना, देख लो फिर भी। हाँ, करणध्याय आगे के पेज पर भी है, 93 अपूर्व करणध्याय न रह गया है। तदो अपूर्व करणध्याय संखेज यदि भागे गदे, तदो परभवियम नामानम बंधगो जादो। ये संखेज यदि भाग लिखा है ना, इन्हें संख्यात वा भाग, जब संख्यात बहुभाग कहते हैं तो संखेज जा भागा। कल अश्विन भाई का प्रश्न था ना, क्या कहा?
संखेज भाग,
यहाँ संखेज यदि भागो लिखा है।
हाँ।
भागे गदे, और जहाँ संख्यात बहुभाग होता है वहाँ संखेज जा भागा लिखते हैं। उस समय क्या होता है? परभवीय नामानम बंधगो जादो, परभव संबंधी नाम का बंध होता है। हिंदी पढ़ेंगे देखो, तत्पश्चात किया उन्होंने, अब तो आएगा तो आधा तक। अपूर्वकरण के संख्यातवे भाग के व्यतीत होने पर, तो संख्यातवा भाग यानी कितना भाग? अश्विन भाई बोलो,
अपूर्वकरण का भाग है तो उसका संख्या
कितवा?
संख्या कोई भी संख्या ले सकता,
कोई भी संख्या नहीं हो सकता।
अच्छा यहाँ सॉरी, नहीं 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 नहीं, सात भाग में से छह,
सात भाग में से एक भाग जाने पर, एक भाग जाने पर
अच्छा छठे भाग में तीस की विच्छुति
चढ़ते समय छठे भाग में देवगति आदि की
विच्छुति देव संबंधी नाम कर
और सातवें भाग में हास्यरति वगैरह की विच्छुति यानी कितवा भाग अभी यानी सातवा भाग
वन सेवन भाग बीत गया
वन सेवन बीत जाने पर तो अपूर्वकरण के संख्यातवें भाग के व्यतीत होने पर वहां से परभव संबंधी नाम कर्म की प्रकृतियों का बंधक होता है। अब यहाँ कौन सा परभव बांध रहा है? देवगति बांध रहे हैं यहाँ पर। उतरने वाले अपूर्वकरण के काल में सातवां भाग मात्र उतरे हुए जीव के हमने तो पढ़ा नहीं था, फिर भी उसके पहले हम तो सोच सकते ना, क्योंकि बंध की विच्छेद की सात भागों में बताई थी, पहला भाग, छठा भाग और सातवां भाग। उतरते समय उल्टा, पहला वन सेवन बीत गया, अभी उल्टे क्रम से छठे में आ गया, यानी वो सातवां भाग वो उतरा है नीचे। उस जीव के परभव संबंधी देवगति पंचेंद्रिय जाति आदि नाम कर्म की प्रकृतियों के परिणाम विशेष का आलंबन करके बंध का प्रारंभ हो जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो नाम कर्म की कौन कौन सी यहाँ शुरू होती है? मोहिनी की कितनी हुई अभी यहाँ पर? वहां से रहती भाईजी गुप्ता चालू हो गए,
नौ हो गई ना,
वही यहाँ पर चालू हो जाएगी, यानी नौ मोहिनी की नौ बन रही है, मोहिनी की नौ बन रही है। हम सब देखे ना ज्ञानावरण की कितनी बन रही है, थोड़ा हिसाब करेंगे।
ज्ञानावरण की पांच,
हाँ ज्ञानावरण की पांच बन रही है,
दर्शनावरण की चार,
दर्शनावरण की
चार,
हाँ यहाँ पर चार बन रही है।
पीछे
अंतराय की बोलो
पांच,
मोहनिया की हमने नौ देखी थी, अंतराय की पांच, अब आगादी की देखते हैं, वेदनीय की
साता वेदनीय उच्च गोत्र
आयु तो नहीं बन,
आयु नहीं बन देगा यहाँ पर।
अभी नाम कर्म की कितनी बन देगी?
तीस।
कितनी?
तीस।
तीस,
हाँ तीस,
हाँ
तीस की चालू बंधक की विच्छेद की देखी था ना हमने,
अभी तीस बताएंगे आप।
निर्माण देवगति
यानी ये कितनी हुई टोटल? बत्तीस पांच सैतीस सदतीस छेचालीस पचास पचपन पचपन का बंद है यहाँ पर,
तिरपन का देखा था क्या, पचपन का देखा था,
आठवें में, आठवें के अलग अलग भेद कर रहे हैं ना, इसलिए कोई बात नहीं, अभी हम इसका हिसाब लगाएंगे। तीस कौन सी प्रकृतियां हैं?
निर्माण
क्रम से बताओ भाई, तीर्थंकर,
निर्माण,
प्रशस्त व्यायगति,
प्रशस्त,
हाँ
देवगति,
पंचेंद्रिय जाति, हाँ देवगति, गत्यानुपूर्वी,
वैक्रिय,
वैक्रिय, अभी शरीर लेने के तेजस कर्मण,
नहीं नहीं
पहले देवगति की ले लो ना, वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग, आहारक आहारक अंगोपांग, फिर समचतुरस्र संस्थान,
स्पर्श रस गंध वर्ण,
अगुरु लघु वर्णाधिचार,
अगुरु लघु
चतुष्क त्रसादि चतुष्क, फिर स्थिर शुभ सुभग आदय यशस्वित, ये तीस हो गए। वर्णादि कहे हमने दोबारा, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विहार गति, पंचेंद्रिय जाति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग, आहारक आहारक अंगोपांग, तेजस कारमान, समचतुरस्र संस्थान, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, फिर
स्पर्श की चार,
नहीं नहीं वर्णादि पहले बताना चाहिए थे, अभी यहाँ बताएंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण, हम वर्ण से लेते हैं वर्णादि चार, फिर त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, फिर स्थिर शुभ
सुभग
आदेय और यशस्वी, ये तीस हो गए ना, पहले चौबीस ये ना, ये बारह बारह और ये छह,
दस युगल में से कितने, दस के चारों ले लिए और छह वो भी ले लिए, चार,
हाँ
और बाकी छह जो बचे थे, शुभ
स्थिर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर
आदेय
यशस्कीर्ति, ऊपर यशस्कीर्ति ऊपर जाती
है,
क्योंकि वो तो लास्ट में बनती थी ना।
अच्छा इसलिए हम लोग पंचावन में घोटाला हो गया, यहाँ पे यशस्कीर्ति का उदय नहीं बंदर की विच्छुति
अपन यानी हमने 30 की बंदर विच्छुति देखी नहीं यहाँ पर
नहीं सातावेदनी आगे तक बंधेगी तो वो हमने नहीं गिनी. अच्छा हमने गिनी सातावेदनी
आगे तक होती है पर यहाँ भी तो गिननी चाहिए ना.
नहीं सातावेदनी गिन ली पर
नाम
कर्म
में इसमें एक कम
एक, एक, एक
यशस कीर्ति भी बनती आई है.
सब 56 का हिसाब हो गया बराबर
56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
पहले भाग में नहीं आए ना,
पीछे दो की ओर,
वहाँ तो निद्रा प्रचला भी और बढ़ेगी। हाँ, यहाँ क्या लिखते हैं, परभव संबंधी शुरू हो जाता है बंद। अब आगे का सूत्र, तदो ठिदिबंध सहस्यहिम गदेहिम अपूर्व कर्णध्याय संखेज्यसु भागेसु गदेसु निद्दा पयलाओ बंदई। तत्पश्चात हजारों स्थितिबंधों के व्यतीत होने के साथ अपूर्वकरण के काल के संख्यात बहुभाग प्रमाण काल के बीतने पर, पहले संख्यात जदि भागे लिखा था, अभी संख्यात जैसो भागे सुगदेश बहुवचन लगाए ना उन्होंने, संख्यात बहुभाग ने कितने बहुभाग लिए,
छह सप्तम,
सात में से छह बीत गए। निद्रा और प्रचला का बंध प्रारंभ करता है। तेजल आपको बताना ये कौन से प्रकृति के भेद हैं, यानी मूल कौन सी प्रकृति है इसकी, निद्रा प्रचला दर्शन, बहुत अच्छा। अब क्या कहते
तत्पश्चात,
हाँ उसके बाद कितने, तो पांच
नहीं, हम लोग पहले भाग में विच्छुति देखते हैं ना, निद्रा प्रचला की, तो छह,
तो यहाँ शुरू हो गए ना बंद, पहले के अंत तक बंद था,
तो छह सप्तम चला जाएगा, पीछे बंद चालू।
यानी अरविंद भाई का कहना है पहले एक भाग हमने ऑलरेडी वन सप्तम निकाला था,
अच्छा, और अभी वापस
अभी पांच भाग गए जाने पर।
बीतने
पर यहाँ आगे पढ़ेंगे हम, निद्रा प्रचला का बंध प्रारंभ करता है। उतरने वाले अपूर्वकरण के प्रथम सातवें भाग के अंतिम समय में परभव संबंधी नाम कर्म की प्रकृतियों के बंध होने लगने पर पश्चात फिर भी पांच बटे सात भाग को बिताकर, पश्चात उसके साथ गिनेंगे, अपूर्वकरण का टोटल काल कितना बता बीत गया है, तो छह बटे सात, और ये पहला भाग बीतने पर और कितना बीता, तो पांच बटे सात भाग को बिताकर छठवें भाग के अंतिम समय में, यानी टोटल छठवां भाग का अंतिम समय, इन दोनों प्रकृतियों का बंध प्रारंभ हो जाता है। यही सूत्र का समुच्चयार्थ है। देखो ये आठवें गुणस्थान के हम सात भाग करेंगे, ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये पहला भाग बीत गया, यहाँ पर उसने, यहाँ पर हास्यरति शोक भय का बंध प्रारंभ किया था, इस पॉइंट पर देवगति वगैरह वो तीस प्रकृतियों का बंध प्रारंभ किया था, अब यहाँ जाके उसको निद्रा प्रचला का बंध प्रारंभ होगा, तो कितने भाग बीत गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, सात में से पांच बीत गए वहां पर,
एक पहले पे,
इस पॉइंट पर से लेना, जहाँ देवगति आदि का बंध प्रारंभ हुआ था वहां से कितना बीत गया है, तो पांच बटे सात भाग अपूर्वकरण, शुरू से लेंगे तो छह भाग बीत गए हैं, अपूर्वकरण का कितना काल बीत गया, तो छह बटे सात भाग, यहाँ से शुरुआत हुई ना, काल तो यहाँ बीच वाला गिनेंगे, ये तो पहला समय, ये अंतिम समय, ये आगे का अंतिम समय, इस तरह से। आगे का सूत्र पढ़ेंगे अभी, तदो संखेज्यसु ठिदबंध सहस्यसु गदेसु चरिम समय अपूर्वकरणं पत्तो तत्पश्चात हजारों स्थितिबंधों के बीतने पर अपूर्वकरण के अंतिम समय को प्राप्त होता है। यह पहुंच गया। निद्रा प्रचला का बंद प्रारंभ हो जाने पर वहां से आगे फिर भी संख्यात हजार स्थितिबंध गर्भित अंतिम सातवें भाग के बीच जाने पर, यानी इस सातवें भाग में भी हजारों स्थितिबंध हो जाते हैं बढ़ते हुए, यह जीव अपूर्वकरण के अंतिम समय को प्राप्त होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। उस समय स्थितिबंध का प्रमाण अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम के भीतर कोटि लक्ष्य पृथक्त्व सागरोपम होता है। एक्चुअली कोटि सागर पृथक तो चाहिए था, कोटि लक्ष्य लाखों करोड़, ठीक है, करोड़ करोड़ नहीं है, लाख करोड़ है, करोड़ इंटू लाख लिए और उसमें भी पृथक्व लगाया। कोड़ी सदसहस पुदत्त लिखा है ना, समझ में आई बात? जब अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में आया था उतरने वाला, तब कितना हुआ था? लक्ष्य पृथक्व सागर अने लाखों सागर, वहां अंतः कोड़ी प्रमाण था, करोड़ के अंदर, करोड़ सागर से कम, अपूर्वकरण के अंतिम समय में पहुंच गया है उतरने वाला, तो अंतः कोड़ाकोड़ी के भीतर आया। उसके लिए करोड़ लक्ष्य पृथक्त्व सागर यानी कुछ लाख करोड़, करोड़ करोड़ हो जाए तो कोड़ाकोड़ी हो जाएगी, तो एक करोड़ के बदले वहां पर लाख रखा तो करोड़ गुना लाख और उसमें पृथक्त्व लगाया। तथा स्थितिबंध का अल्प बहुत्व पहले के समान जानना, जो बीसी तीसी चालीसी का प्रपोर्शन है वैसा ही होगा। सभी उतरने वाले जीवों के स्थितिघात और अनुभाग घात नहीं होता है। चढ़ने वाले उनको क्या हो रहा था?
अनुभाग और स्थिति कांडक घात,
कांडक घात होते थे, वैसे कांडक घात अभी नहीं होंगे क्योंकि स्थितिबंध और बढ़ते हुए हो रहा है ना यहाँ पर। परंतु व्यतीत हुए स्थान में गलित शेष आयाम रूप से गुण श्रेणी प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी हानि रूप से सर्वत्र प्रवृत्त रहती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ उतरते हुए उन्होंने बताया था कि जब अनिवृत्तिकरण के पहले समय में पहुंच गया था तो गुणश्रेणी अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और थोड़ा एक आवली इतना ज्यादा रखा था। अब जितना काल बीत गया, पहले अनिवृत्तिकरण काल बीत गया है, अभी अपूर्वकरण बीत गया है, तो हर समय क्या हो रहा है, जितना गुणश्रेणी के लिए अपकर्षित द्रव्य है वो असंख्यातवे भाग हो रहा है और इसमें से एक एक निषेक कम हो रहा है। यहाँ लिखा ना गलित शेष आयाम रूप से गुण श्रेणी प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी हानि रूप, आयाम का असंख्यात गुणा हानि नहीं कहना है, आयाम तो एक एक निषेक गलेगा, आयाम तो असंख्यात भाग घटेगा, एक निषेक उसका असंख्यात भाग, अंतर्मूल प्रमाण तो गुण श्रेणी थी, परंतु इसमें जो द्रव्य दिया था
असंख्यात गुणी
अपकर्षित द्रव्य वो असंख्यात भाग, क्योंकि चढ़ते हुए असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा बढ़ता था, अब असंख्यात भाग हो रहा है और यहाँ गलित शेष बची, एक 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 निषेक गल रहा है, तो कहते अभी भी वो गुण श्रेणी वहां बची है। यहाँ लिखा है ना सर्वत्र प्रवृत्त रहती है, क्योंकि
समय प्रबद्ध की अपेक्षा निर्जरा ज्यादा,
समय प्रबद्ध से ज्यादा ही है, परंतु जो
नहीं
असंख्यात समय प्रबद्धों की जो उदीर्णा होती थी वो रुक गई है, परंतु पहले जो गुण श्रेणी जो बनी थी वो तो फिर जाएगी। उपशम श्रेणी के महात्म्य से जो पहले से गुण श्रेणी बनी थी उसके ऊपर ऊपर के निशे अभी पहले से कम माल इसमें आ रहा है, परंतु ऑलरेडी इसमें बहुत सारा माल है। जब इसका शीर्ष आएगा तो बहुत सारे वहाँ उदीर्ण यानी उदय भी हो जाएगा, परंतु ऊपर से आने वाला द्रव्य घट रहा है अभी। फिर भी यहाँ गुण श्रेणी कुछ बाकी है, इतनी बात
तो बाकी है,
अभी भी बाकी है थोड़ी।
और ये बनी कहाँ से थी? ग्यारहवें से बनी?
देखो ग्यारहवें में ऑलरेडी थी, जो ग्यारहवें के संख्या पे भाग प्रमाण थी। जब सूक्ष्म सांप्राय में आया है, अन्य में तो सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्ति पूर्वकरण सबका मिला हुआ जितना काल था उतना ही था। ज्ञानावरणादि मोहिनी की कितनी बनी है? वहां तो कृष्टि की बनी है, सूक्ष्म सांप्राय से आवली ज्यादा। जब फिर बादर कृष्टि का बादर सॉरी लोभ का उदय हुआ यानी नवे गुण स्थान में प्रवेश किया, तो नौवा आठवा प्लस थोड़ा अधिक यानी आवली अधिक, इतनी लंबी गुण श्रेणी बनी थी। अन्य कर्मों की भी उतनी ही थी, आयु को छोड़कर बाकी सभी कर्मों में इतनी लंबी गुण श्रेणी बनी। अब वो कैसी थी? गलित शेष थी। हर समय उसका एक 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 निषेक गलते 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 अभी अपूर्वकरण के अंत में आ गया, अभी भी थोड़ी बाकी है ना, उसकी लंबी बनाई थी उसने, गलित शेष यहाँ भी बाकी है थोड़ी।
यदि ये जो लास्ट लाइन में बताया ना, परंतु व्यतीत हुए स्थान में गलित शेष आयाम रूप से गुण श्रेणी प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी हानि रूप से सर्वथा प्रवृत्त रहती है। सो आने वाले द्रव्य की अपेक्षा बात है
वही,
बाकी निर्जरा तो असंख्यात गुणा ही होती है, क्योंकि पहले जो गुण श्रेणी
पहले जो गुण श्रेणी बनी है
हाँ।
उसकी तो होगी वहाँ पर,
आने वाला द्रव्य असंख्यात गुणाहीन रूप से आ रहा है, पर जो निर्जरा हो रही है
वहाँ ऑलरेडी जो ऊपर के गुण स्थानों में उसमें जो गुण श्रेणी बनाई थी
वो असंख्यात गुणा हाँ।
वो तो वैसे तो चढ़ने वाले ने जो बनाई थी वो तो फिरते फिरते वहाँ नई बनाई थी ना गुण श्रेणी उसमें
हाँ।
फिर भी वो उदीर्ण असंख्यात समय प्रबोधों की हो रही थी विशिष्ट पॉइंट तक, हमने देखी थी उसकी
हाँ।
बाद में वो असंख्यात गुणा वाली नहीं रही। कुछ कहना अभी
नहीं हाँ। नहीं मैं सोचा था ये चय रूप से है कि असंख्यात गुणा रूप से है?
चय नहीं है, चय केवल थोड़ा थोड़ा अधिक होता है। यहाँ गुणित प्रमाण जो कुछ होगा है अभी, यहाँ तो आने वाला द्रव्य तो असंख्यात गुणाहीन हो रहा है और निषेकों की संख्या एक एक से कम हो रही है, तो ऑलरेडी उसमें जो पहले पूर्व अवस्था में जो अधिक 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 आया था उतने प्रमाण में खिरेगा वो, यानी एक समय प्रबद्ध से तो बहुत ज्यादा होगा ना ये, अभी और नीचे आएगा तो और गुण श्रेणी लंबी लंबी होती चली जाएगी। अभी तक तो वही गुण श्रेणी चली
गलित अवशेष
जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में बनाई थी वही गलितावशेष रूप से यहाँ तक स्थित है। अब इसके बाद और नई कुछ रचना होगी वो बताएंगे। से काले पढ़म समय अधा पवत्तो जादो, यहीं पर आ गए ना, यानी पूर्वकरण के अंतिम समय के बाद सातवें में आया है, परंतु करण की भाषा में उसको क्या कहेंगे? अध प्रवृत्तकरण। चढ़ते समय भी पहले अध प्रवृत्तकरण किया, फिर अपूर्वकरण किया, फिर अनिवृत्तिकरण किया, उतरते समय उसी क्रम से आया। तदनंतर समय में प्रथम समयवर्ती अध प्रवृत्तकरण संयत हो जाता है। तदनंतर समय में अनंत गुणी हीन विशुद्धि के होने से चढ़ते समय विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती थी, अब अनंत गुणा हीन हो रही है। अप्रमत्त गुणस्थान में उतरकर यानी अभी अप्रमत्त गुणस्थान शुरू हो गया, प्रथम समयवर्ती अध प्रवृत्त संयत हो जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अध के बाद वो नहीं चाहिए हाँ, विसर्ग चाहिए। ऊपर लिखा है ना अध, सूत्र में लिखा है वैसा, यह उक्त कथन का तात्पर्य। इस प्रकार अध प्रवृत्तकरण गुणस्थान में अवतीर्ण हुए, अभी इसको गुणस्थान कह दिया है अध प्रवृत्त में अपमत्त गुण एवं अधापवत्तकरण विषयम ओइन्नस्य। यहाँ अध प्रवृत्त करण में अवतीर्ण हुए ऐसा, वहां गुणस्थान शब्द ऊपर तो नहीं है, इन्होंने डाला कहाँ है? अपमत्त तो ऊपर है, अप्रमत्त तो गुणस्थान का नाम है। देखो ऊपर पढ़ेंगे प्राकृत में, तदनंतर समय अनंत गुणहीन विशो ही परिलंबे न अपमत्त गुणठानम ओइन्नो, यानी उतरा परम समय अधापवत्त संजदो जादो, प्रथम समयवर्ती अध प्रवृत्त संयत हो जाता है, ती बनिदम हो ऐसा बताया है।
तो
अभी अभी इसको सुनो पहले। एवं अधापवत्त करण विषयम ओइन्नस्य, इस प्रकार अध प्रवृत्त करण में अवतीर्ण हुए चाहिए। गुणस्थान में कहां से डाला? एवं अधापवत्त करण विषयम ओइन्नस्य, हाँ करण विषय ने करण में अध प्रवृत्त करण में
अवतीर्ण हुए।
हाँ ये गुणस्थान शब्द वहां ऊपर नहीं है। तो अध प्रवृत्त करण में अवतीर्ण हुए इस जीव के गुण श्रेणी निक्षेप किस प्रकार से होता है? अभी तक तो गलितावशेष था, असंख्यात गुणाहीन हो रहा था, अब इस पोजीशन पर गुण श्रेणी का क्या होगा ये बता रहे, पूछ रहे। इस प्रकार की जिसे शंका उत्पन्न हुई ऐसे शिष्य के प्रति, उसका निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ है, क्योंकि वो तो गलितावशेष मिटते मिटते अभी बहुत कुछ कम बाकी। अभी आपका क्या प्रश्न था?
यहाँ पे परिणामों की ये जो अनंत गुणी हानि बताई है, तो यहाँ छह गुणी हानि पकड़ने की एक ही हानि होगी, अनंत गुणी
प्रति समय अनंत गुणा हानि, छह गुणा नहीं, छह प्रकार के यहाँ नहीं है।
ये अध प्रवृत्त करण में आ गया है तो प्रति समय
चढ़ते समय क्या हो रहा था?
प्रति समय अनंत गुणी वृद्धि।
अध प्रवृत्त करण में क्या होता है चढ़ने वाले की?
प्रत्येक समय में अनंत गुणी वृद्धि होती है,
अपनी अपनी वृद्धि अनंत गुणी। अब उल्टे में क्या होगा?
अनंत गुणी,
अनंत गुणी हानि। छह प्रकार के नहीं है इसमें, कैसे होगी यहाँ पर?
नहीं नहीं मैं पूछा,
नहीं नहीं अध प्रवृत्त में चढ़ते समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा बढ़ता गया है, अभी अनंत गुणा हानि होगी। हाँ तो ये पहले वाले गुण श्रेणी तो अभी मिटने को आई है, गलित शेष थी, तो अभी इसको क्या होगा ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर देंगे। तदो पढ़म समय अधापवत्तस्य अन्नो गुण श्रेणी निक्षेपो, अभी नया गुण श्रेणी निक्षेप हो जाएगा। पुराण गादो निक्षेवादो संख्यज गुण, पुराण एक से संख्यात गुणा वाला होगा, निक्षेप यानी उसकी लंबाई। हाँ? अभी वो मिटते मिटते मान लेते आवली या जितने कुछ बाकी थी उतनी थी,
विशेष अधिक कितना था,
अभी उसके संख्यात गुणा हो जाएगी
निक्षेप।
अब ये छोटी छोटी होते होते मान लेते आधा इंच हो गई, वो तो संख्यात गुणा 5-6 इंच की हो जाएगी, नई गुण श्रेणी हो जाएगी। उसको निक्षेप कहा, गुण श्रेणी निक्षेप का अर्थ होता है गुण श्रेणी का आयाम, नंबर ऑफ निषेक,
कितने निषेक में,
और गुण श्रेणी मात्र कहते हैं तो कितना अपकर्षित द्रव्य गुण श्रेणी में दिया है उसका अर्थ होता है। ऊपर जो विकल्प है ना, असंख्यात गुणा हीन रूप से गुण श्रेणी प्रवृत्त होती है, वो कितना माल दिया या कितने गुणा है, क्या
सभी का
नहीं नहीं सभी में है,
सभी में बनी
आयु को छोड़कर सभी में है, और सभी की समान गुण श्रेणी थी। हाँ वो संयत की गुण श्रेणी थी ना, संयत की गुण श्रेणी थी, छठे सातवें की गुण श्रेणी थी वहाँ पर, वो गुण श्रेणी तो पांचवे से होती है। सभी की होती, सभी में होती, हमेशा गुण श्रेणी तो सभी कर्मों में रहती है। तभी हम नीचे आया ना, अध प्रवृत्त में आया है, हम हिंदी पढ़ेंगे इसका, तब अध प्रवृत्त संयत के मिला ना, 213 के ऊपर का बीच वाला सूत्र, अध प्रवृत्त संयत के प्रथम समय में, ये अध प्रवृत्त संयत कौन कहा, ये श्रेणी से उतरा हुआ अभी जब अध प्रवृत्त करण में जो विद्यमान है उसको कहा है। प्रथम समय में पुराने गुण श्रेणी निक्षेप से संख्यात गुणा बड़ा, यहाँ जितना गुण श्रेणी था उससे संख्यात गुना बड़ा अन्य गुण श्रेणी निक्षेप होता है। यहाँ बड़ी गुण श्रेणी आयाम लंबा चालू हो गया, नया होगा, यहाँ नया तैयार हो गया, ऊपर जो गुण श्रेणी पहले बनाई थी उससे भी संख्यात गुना वाली यहाँ गुण श्रेणी होगी, आयाम उसका आयाम बढ़ेगा।
ये स्वस्थान हो गया ना, सातवां गुणस्थान अभी आता है,
नहीं नहीं ये तो अवस्थित रहेगी ना, इसको गलित अवस्थित का संबंध नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे ना इसको। हाँ देखो, अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा उसके अंतिम समय में अपकर्षित किए प्रदेश पुंज से, वहां जितना अपकर्षण होता था, अपकर्षण होकर ही तो गुण श्रेणी बनती थी, उससे असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज का अपकर्षण करके अधप्रवृत्त संयत गुण श्रेणी को करता हुआ यह जीव, यानी अधप्रवृत्त संयत संबंधी यह गुण श्रेणी बनेगी। प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक जीव ने ज्ञानावरणादि कर्मों का अपूर्ण नहीं अपूर्व चाहिए, अपूर्व अनिवृत्ति काल से विशेष अधिक आयाम वाले जो पुराने गुणश्रेणी निक्षेप की रचना की थी, ये बची हुई गुणश्रेणी से संख्यात गुणा नहीं
जो
उतरते हुए पहले जो उसने बनाई थी ज्ञानावरणादि और बाद में मोहनी की भी उसके समान हो गई थी, उससे भी संख्यात गुणा लंबी। उससे संख्यात गुणे आयाम वाले गुण श्रेणी की रचना यह करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। सत्वार सूत्र में जो एक सूत्र है कि विशिष्ट इतने 11 स्थान है, उसमें असंख्यात गुणा निर्जरा वाले है, उसका अर्थ क्या है, पहले में पोजीशन पर लिया जो प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है, तो उसने जितनी अभी वो भी ज्ञानावरणादि सब में गुण श्रेणी की रचना करता है, तो उसने कितनी गुण श्रेणी बनाई, मान लेते इतनी बढ़िया ऐसी बनाई, उसके ऊपर पांचवे गुणस्थान वाला कितनी बनाएंगे, इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी, छोटी होगी और उसमें अपकर्षित द्रव्य ज्यादा होगा, तो इससे ये असंख्यात गुणा गुण श्रेणी होती है ऐसा कहेंगे, परमाणु अधिक जाएंगे और पर निषेक ज्यादा माल आएगा, अधिक द्रव्य अपकर्षित होता है इसका लंबा आयाम है तो अधिक निषेकों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका आयाम छोटा होता है, यानी आयाम संख्यात्वे भाग होता है और द्रव्य असंख्यात गुणा होता है, ऊपर ऊपर जो है संयतों की, फिर दर्शनमुखी क्षपना करने वाले की, उपशमुखी क्षपक की, ऐसे जो अलग अलग स्थान बताए वहां पर, तो वहां कहते कि गुण श्रेणी का आयाम घटता है संख्यात्वे भाग प्रमाण होता है, यानी संख्यात गुणाहीन होता है, और वहां आकर्षित करने किया जाने वाला द्रव्य कहो या उदय में आने वाला निर्जरा होने वाला द्रव्य असंख्यात गुना होता है,
आकर्षित द्रव्य बढ़ता है
तो बढ़ता है। हाँ यह उक्त कथन का तात्पर्य। देखो शंका, ऐसा किस कारण से करता है, उसका समाधान, क्योंकि मंदतर विशुद्धि के कारण, यानी विशुद्धि भी मंद हो रही है, मंद कशा नहीं कहा, विशुद्धि मंद कहा, विशुद्धि का बढ़ना हो रहा था चढ़ते समय, अभी विशुद्धि का घटना हो रहा है, मंद मंद हो रही है, मंदतर विशुद्धि के कारण सर्वत्र गुण श्रेणी आयाम यानी उसकी लंबाई उत्तरोत्तर बड़ा स्वीकार किया गया है, हमने देखा ना उतरते समय वो बड़े बड़े होती गई थी, हमने पहले भी देखा था सूक्ष्म सांप्राय में जो की थी, जब बादल लोभ का उदय आया था उसकी गुणश्रेणी और बड़ी थी, जब माया वेदक आला तो और बढ़ी थी, फिर मान वेदक में और बढ़ी थी,
पुरुष वेद में
क्रोध वेदक में आया था तो और बढ़कर फिर बाद में गलितावशेष हुई। अब इस जीव के यह गुण श्रेणी निक्षेप अवस्थित आयाम वाला होता है। आपके प्रश्न का उत्तर आया, गुण श्रेणी निक्षेप कहो या उसका आयाम कहो, अवस्थित आयाम वाला होता है। इस बात का कथन करते हुए सर्वप्रथम पहले के गुण श्रेणी निक्षेप के गलित शेष आयाम रूप से अवस्थित पने का उदाहरण करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। जाव चरिम समय अपूव करणादोक्ति से निखे वो, अपूर्वकरण के अंतिम समय तक यानी उसके पहले से जो करते आया था वहां तक उत्तरोत्तर शेष शेष में निक्षेप होता है। ये तो पहले की बात थी, क्यों? क्योंकि वो पहले गुले गलितावशेष था, अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण में आया, अपूर्वकरण से भी अंतिम समय तक पहुंचा उतरने वाला, तो वहां गुण श्रेणी कैसी थी? गलित शेष थी। तो इसका उत्तरोत्तर शेष शेष में निक्षेप होता है यानी होता आया है। आ गए, परंतु उसकी कंपैरिजन वो पहले वाले गुण श्रेणी से कर रहे, अभी की गुण श्रेणी अवस्थित रहेगी। अब ये हर समय नीचे का एक निषेक गलेगा तो ऊपर का सत्ता का एक निषेक गुण श्रेणी में एंटर होगा, इसलिए उसको अवस्थित कहेंगे। देखो, उतरने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के प्रथम समय से लेकर अपूर्वकरण के अंतिम समय तक, तो इस काल के भीतर ज्ञानावरणादि कर्मों का जो गुणश्रेणी निक्षेप प्रवृत्त होता है वह गलित शेष आयाम वाला ही होता है। ज्ञानावरण का तो दसवें गुणस्थान से गलित शेष बना था, मौल्य में ही तो थोड़ा एक एक वेदक काल के लिए अवस्थित होगा, फिर दूसरा अवस्थित हुआ, फिर बढ़ते चला गया था। ज्ञानावरणादि तो दसवें गुणस्थान से लेकर उसका गलित शेष आयाम वाला था, क्योंकि प्रत्येक समय में जितनी जितनी गुण करना गुण श्रेणी रचना शेष रहती जाती है, एक एक निषेक गलते जाता है, और जितनी शेष रहती है उसी में निक्षेप का नियम देखा जाता है। निक्षेप यानी गुणित प्रमाण में निक्षेप यानी डालना, अपकर्षित द्रव्य सर्वत्र दिया जाता है, कितने निषेकों में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाता है, उसको गुण श्रेणी कहते हैं। तो गुण श्रेणी का जो जितने नंबर ऑफ निषेक है एक एक गलने से उसको कहेंगे गलित शेष, उतने में ही निक्षेप होता है। यह यहाँ इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्म का, ये विशेषता बता रहे हैं, मोहनीय में विशेषता है, मोहनीय कर्म का सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से लेकर कितने ही काल तक अवस्थित अनवस्थित, यानी कुछ काल के अवस्थित होगा फिर बढ़ेगा, यानी उसको अनवस्थित था, फिर कुछ काल तक अवस्थित रहेगा
फिर
और बढ़कर अनवस्थित हो जाएगा, तो अवस्थित अनवस्थित रूप से गुणश्रेणी निक्षेप होकर तत्पश्चात गलित शेष आयाम के द्वारा, ये कब हुआ था? जब क्रोध वेदक अपना चालू हो गया था तो एक बार बढ़कर ज्ञानावरण के समान हुआ था और बाद में गलित शेष हो जाने वाला था। ज्ञानावरणादि कर्मों के सदृश आयाम वाला हो जाता है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि तीनों ही गुणस्थानों में बढ़कर वहां अवस्थित गुणश्रेणी निक्षेप की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये कौन से तीन गुणस्थान मंजू? सात सह पांच, आप क्या कहते हैं? दस नौ आठ कहो ना, उल्टे क्रम से उतरने वाला है ना। सूक्ष्म सांप्राय से बहुत बार वो बढ़ा फिर अवस्थित रहा, फिर बढ़ा फिर अवस्थित रहा, तो ये कहते तीनों ही गुणस्थानों में बढ़कर ग्यारहवें में जो थी दसवें में प्रवेश करने पर एक बार बढ़ गई, नौवें में प्रवेश करने पर फिर बढ़ गई, आठवें में प्रवेश करने पर वही चल रही थी परंतु अपने अपने वेदक काल में बढ़ गई थी,
क्रोध के काल में बढ़ गई थी।
वहाँ अवस्थित गुणश्रेणी निक्षेप की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब यहाँ बढ़ेगी, सातवें में बढ़ेगी, पहले दसवें में बढ़ी थी, नौवे में बढ़ी थी, परंतु लोक वेदक में बढ़ी, फिर माया वेदक में बढ़ी, फिर मान वेदक में बढ़ी, क्रोध में बढ़ी। शंका, वह कैसे, उसको बताते हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक के काल में सर्वत्र अवस्थित गुणश्रेणी निक्षेप होकर पुनः स्पर्धगत लोभ का आकर्षण करने वाले के एक बार बढ़कर लोभ वेदक काल के अंतिम समय तक पुनः अवस्थित हो जाता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, सूक्ष्म सांप्रायिक के काल में वहाँ जो कोई गुणश्रेणी रचना हुई थी अपकर्षण होकर, तो पृष्टि वाला हुआ था, संज्वलन लोभ ही उसको कहते हैं। वो कैसे थे, पृष्टि रूप से थे। जब नौवे गुणस्थान में एंटर हुआ तो स्पर्धक गत लोभ की गुणश्रेणी हुई,
नहीं बनी,
यानी बादर लोग के वहाँ गुणश्रेणी रूप से रचना हुई। उस समय एक बार गुणश्रेणी का निक्षेप बढ़ गया, तो एक बार बढ़कर यानी लोभ वेदक जो है ना, कौन सा, स्पर्धक वाला बादर लोभ वेदक के पहले समय में उसने और बड़ी गुणश्रेणी बनाई, फिर वो अवस्थित रही। कब तक,
मान का वेदक काल,
लोभ वेदक काल के अंतिम समय तक अवस्थित हो जाता है। पुनः माया का अपकर्षण करने पर मान का दूसरी बार,
माया का दूसरी बार बोलकर रखने,
मान का शब्द ही नहीं चाहिए बीच में,
मान का निकालना
उठ जाते हैं जहाँ लोभ वेदक गत चरण में पुनः माया। नीचे से तीसरी लाइन प्राकृत में, मायाम ओकड्डिते मानस विद्यवारम वड्ढी दूना वड्ढिदो जादो जाव सगवेदग सगवेद काल चरिम समोत्ति। माया का अपकर्षण करने पर मान का दूसरी बार बढ़कर अपने वेदक काल के अंतिम समय तक अवस्थित हो जाता है। एक लाइन कुछ छूट गई है,
नहीं ये मान का निकल नहीं पड़ेगा।
माया का अपकर्षण करने पर दूसरी बार बढ़कर अपने वेदक काल के अंतिम समय तक अवस्थित हो जाता है, ऐसा चाहिए। मान का शब्द ही नहीं चाहिए वहाँ पर, ऊपर पड़ा है इसलिए उन्होंने ही लिखा है। पुनो मायाम उकड्डिले विद्यवारम वड्डी दूना,
दूसरी बार जो बढ़कर चाहिए
एक एक मिनट, मान का दूसरा अर्थ है, प्राकृत पढ़ेंगे पहले, अब कहाँ से बताऊँ आपको, तम कथम लिखा है ना बीच में, नीचे से पांचवी लाइन में तम कथम, वहाँ गुहुम हुआ है, सुहुम करना, सुहुम सांप्रायित धाये सवत्थ अवट्ठित गुण श्रेणी निखे वो होयू न, समझ में आई बात। सूक्ष्म सांप्राय में सर्वत्र अवस्थित गुणश्रेणी होती है, पुनो फिर खड्डय गदम स्पर्धक गत बादर लोभ का उदय होगा ना, लोभम ओकड्डे मानस, ये मान यानी मान कशन है, ओकड्डे मानस ने अपकर्षित करने वाले के एक वारम वड्डी न, एक बार बढ़कर पुनो अवट्ठिदो जादो जाव लोभ वेदक धा चरिम समोत्ति, समझ में आई बात। लोभ वेदक के चरिम समय तक अवस्थित रहती है। पुनो माया मोकड्डी दे मानस, ख्याल में आई बात, ये मानस यानी मान कसाई की बात नहीं है, मान यानी करने वाला
मनुष्य की बात,
हमें ना ये कौन सा, ये गतिमान है, ये जीव गतिमान है, जा रहा है,
हाँ
चढ़ने वाला, वाला वाला के अर्थ में मान शब्द है। अब उसके करने पर नहीं, माया का आकर्षण करने वाले के यहाँ लेकिन माया मोकड्डी दे मानस एक शब्द है जैसे ऊपर लिखा था लोभ मोकड़े मानस, वैसा ही है मान याने वाला याने माया का आकर्षण करने वाले के
दूसरी बार बढ़कर
वर्धमान के थे ना बढ़ने वाला मान शब्द, वो उस अर्थ में मान शब्द आया आगे लिखते हैं तदनंतर मान का अपकर्षण करने वाले के, यहाँ लिखा है ना
वाले के आगे
तदो मानम उक्कड मानस, वहां भी दो बार माना है लास्ट लाइन में मानम उक्कड मानस, यहाँ भी मानस लिखा है वैसा ही वो ऊपर मानस था माया मोकड वे मानस था। हाँ ये तो ठीक है वो ऊपर नीचे हो तो इसलिए मानस अलग, वो एक शब्द ये ख्याल में नहीं आया अभी इतना बड़ा कार्य किया है उसमें क्या है। देखो तदनंतर मान का अपकर्षण करने वाले के तीसरी बार बढ़कर अपने वेदक काल के अंतिम समय तक पुनः उतना ही हो जाता है अवस्थित रहता है। पुनः क्रोध संज्वलन का अपकर्षण करने पर चौथी बार बढ़कर, अब ये बढ़ा तो सही परंतु इसके बाद वो अवस्थित नहीं रहेगा वो अगलित अवशेष हो जाएगा, वहां से लेकर उतरने चाहिए उतने नहीं उतरने वाले अपूर्वकरण के अंतिम समय तक गलित शेष आयाम रूप से होता है। ये बात यहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखी है, पहले ये बात हमने लब्धिसार में से पढ़ी थी
कल
तीन बार बढ़कर अवस्थित हो जाता है चौथी बार लोग क्रोध वेदक में बढ़ता है बाद में वो गलित अवशेष हो जाता है। अब इस प्रकार के पुराने गुणश्रेणी निक्षेप को उल्लंघन कर, अब उसमें से जो कुछ बचा कुचा यहाँ निक्षेप था उसको उल्लंघन करने अभी उसमें और बढ़ाकर संख्या गुण वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, शुरू में जो उसने अनिवृत्तिकरण के पहले ही जो बनी थी लंबी उससे भी संख्या गुणा हो जाती, यह प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण जीव अधकरण चाहिए। पढ़म समय अधापवत्त करणों प्रथम समयवर्ती अधकरण जीव अपूर्व के बड़े अधचन अध प्रवृत्त अधिक अच्छा है अध प्रवृत्त करण जीव, इसके लिए ऊपर ही अपना चौथी लाइन में अधापवत्त लिखा है ना अधापवत्त करणों द्वितीय आदि समयों में अवस्थित आयाम रूप गुणश्रेणी निक्षेप की ही रचना करता है, यानी ये जो यहाँ गुणश्रेणी की रचना हुई संख्यात गुणा बढ़कर हुए अब ये अवस्थित रहेगा, यानी दूसरे समय में ये गलितावशेष नहीं रहेगा
अवस्थित,
ये इतने जो निक्षेप है उसके जो प्रमाण है गुणश्रेणी का वो इतना का इतना रहेगा।
ये तो ये अधप्रवृत्त का है पर ये तो स्वस्था नहीं हो गया है ना सातवें में आने पर तुरंत ही दूसरे समय में
अभी अनंत गुणाहीन हो रही है विशुद्धि अनंत गुणाहीन हो रही है तो अभी अधप्रवृत्त कहेंगे कि तो सामान्य
अनंत गुणाहीन मैं सोचा एक ही समय के लिए अनंत गुणाहीन हो रहा है क्योंकि अवस्थित हो गई ना गुणश्रेणी अनंत गुणी होगी तो उस पर आयाम बढ़ता
तो,
जाएगा
तो उसको हम स्वस्थान कहेंगे तो
स्वस्थान कहना चाहिए
बाद में कहेंगे अभी नहीं। अंतर्मूर्त तक अधप्रवृत्त रहेगा बाद में स्वस्थान होगा, जिस करण से चढ़े हैं उल्टे करण से तो उतना उतना काल तो जाएगा ना उसमें भले कम होगा अधिक जो कुछ है परंतु इसका भी अपना अंतर्मूर्त काल होगा ही। हाँ अभी ये साथी से अप्रमत्त ही है
गिरने के अपेक्षा
हाँ
नहीं
तो ये अवस्थित आयाम रूप जो गुणश्रेणी निक्षेप की रचना करता है, इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र कहते हैं, उसको हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। दोषी से
नमो यंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरणु नमो विज्ञानु नमो लेतुस्ताणु नमो यंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरणु नमो विज्ञानु नमो लेतुस्ताणु नमो यंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरणु नमो विज्ञानु नमो।